يعوذ بك من سوء القضاء. اے اللہ، ہم برے فیصلے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے. اس کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ دعا اور تقدیر کا کیا تعلق ہے. عموماً تقدیر کے بارے میں جو الجھنیں پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ دعا اور تقدیر کے تعلق کو سمجھ نہیں پاتے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہماری تقدیریں چونکہ پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، تقدیریں لکھی جا چکی ہیں تو پھر دعا نہ کریں، اور یا پھر اگر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلے تھوڑا سا ہم تقدیر کو دیکھتے ہیں کہ تقدیر ہوتی کیا. نمبر ایک، تقدیر کا لفظ قدرہ سے ہے، قاف دال را، اندازہ کرنا. قدرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، گیس کرنے کے معنوں میں، ایسٹیمیشن کا معنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح تقدیر کے بارے میں دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور لامحدود اور وسیع علم ہے. ماضی، حال، مستقبل، غائب، حاضر، دن، رات، روشنی، تاریکی، یہ ساری باتیں تقدیر کے لفظ کے آگے بالکل بے معنی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز اس طرح کھلی ہوئی ہے جیسے ہمارے لیے اس وقت سامنے یہ نوٹ بک کھلی ہوئی ہے. کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے آگے جو چیزیں وہ دکھتی ہیں اس کو پیچھے نہیں دکھتی. ہم سامنے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے والی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے. ہماری سائڈ پہ کوئی چیز ہوتی ہے ہم نہیں اس کو دیکھ پاتے، اس طرف ہوتی ہے نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ کی ذات کو ہمارے ہر معاملے کی خوب اچھی طرح پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کے بارے میں ایسٹیمیٹ لگا لیا تھا کہ لوگ یہ کریں گے یا وہ کریں گے. اس پہ ایک پورا ٹاپک موجود ہے، اگر کوئی مزید اس میں دلچسپی رکھتا ہو تو سن سکتا ہے، تقدیر کی حقیقت. لیکن آپ سمپل سی مثال لے لیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو، ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں استاد جو اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے اس لیے یہ بڑے ہو کے ایک بڑا خراب انسان بنے گا، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بغیر کسی مثال کے یہ چیز جانتی ہے کہ لوگ کل کیا کریں گے. ایک جملہ جس کو حفظ کر لیں تو کر لیں کہ تقدیر حکم الہی نہیں، علم الہی ہے. تقدیر اللہ کا علم ہے، حکم نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں کہ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ بالکل بدل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے دعا کے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بندے کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور اس موت کے وقت کو کسی دوسرے کی یا اس کی دعا کی وجہ سے اس سے دور کر دیا جاتا ہے. دعا قنوت جو رات کو وتر میں پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک لفظ ہے کہ وقینی شر ما قضیت، اے اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے جس کا تو نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی ہے، نسائی کی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فیصلے بدلے جا سکتے ہیں، اللہ ہی بدلے گا. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے پاس پورا اختیار ہے کہ کب چاہے کوئی بات لکھے، کب چاہے مٹا دے. سورت رات میں اس پہ ایک آیت ہے کہ یمح اللہ ما یشاء و یثبت، جو چاہے اللہ قائم رکھے، جو مٹا دے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے فیصلے سے، یعنی برے فیصلے مجھ پہ لاحق نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل سکتے ہیں، دعا کرنی چاہیے. موت کا وقت ٹل جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. ترمذی کی یہ دعا ہے کہ جس میں دعا کو کے ذریعے سے تقدیر کو بدلنے کا تذکرہ ملتا ہے. اگر ہم یہ کہیں نا کہ دعا کرنے سے تقدیر نہیں بدلتی تو ہم اللہ تعالیٰ کو مجبور سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک رائٹر ایک کتاب لکھ لیتا ہے، پھر اس کا مسودہ تیار ہو گیا، چھپ گئی، بک گئی، بہت اچھی لگی لوگوں کو، اگلے سال پھر چھپوانا چاہتے ہیں. طباعت دوم جس پہ لکھا ہوتا ہے تو عموماً اس کے شروع میں کیا لکھا ہوتا ہے، غلطیوں کی اصلاح کر دی گئی، کچھ اور باتیں بتا دی گئیں، جو نہیں تھا ایڈ کر دیا گیا، اس ایڈیشن میں اور اچھا کیا گیا. اس کی مرضی ہے، ایز سون ایز اس کی اجازت ہے، پبلشر جو ہے وہ اس کو چینج کر سکتا ہے. کاپی رائٹس کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی چیز کو لے کے اس میں اپنی مرضی سے کچھ ڈال دے، نکال دے، بعد میں اس کے نام سے پیش کر دے، تو یہ چیز اس کے لیے तकलीफ का सबब होगी तो बिल्कुल तकदीर से फैसले बदल जाते हैं। हमें दुआ मांगने से कभी भी लाहक अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन कुंता कतबतना शकीयन फमहू, ए अल्लाह अगर तूने हमें बदबخت लिखा है तो इसको मिटा दे, और फ़क्तुबना सुआदा और हमें खुशबخت लोगों में लिख दे कि हम खुशकिस्मत हों, और अगर इसके ऑपोज़िट ए अल्लाह अगर तूने हमें बद खुशबخت लिखा है तो इस लिखे को साबित रख, इसको जमा दे और इसके अंदर फिर इजाफा फरमा। सही अल्फाज जो हदीस के हैं वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबतना अशकिया फमहु वक्तुबना सुआदा व इन कुंत कतबतना सुआदा फअसबितना फ़इन्नका तमहू मा तशाउ व तुस्बितु व इंदका उम्मुल किताब। तवाफ़ के दौरान हज़रत उमर ये दुआ मांगा करते थे रो रो कर के अल्लाह अगर तूने मुझ पर बदबख्ती और गुनाह लिखा है तो इसको मिटा दे, इसलिए कि तू जो चाहे मिटाए और जो चाहे बाकी रखे, तेरे पास की लोहे महफूज है, बस तू बदबख्ती को सआदत और मगफरत से बदल दे। कुछ अल्फाज इनके थोड़े से दूसरे से फ़र्क हैं अरबी में, वो भी सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबत अलैया शक्वतन औ ज़म्बन फ़म्हुहू फ़इन्नका तम्हू मा तशाउ व तुस्बितु व इंदका उम्मुल किताब फ़जअलहु सआदतन व मग़फ़िरतन। तो बहरहाल इससे ये पता चल गया कि एक इंसान दुआ मांगे, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, लेकिन दुआ तकदीर को बदलती है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जफ़ल कलमु बिमा अंतका इन, सही बुखारी के अल्फाज हैं ये हज़रत अबू हुरैरा से। आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिससे तू दो चार होने वाला है, कलम उसे लिख कर खुश्क हो चुका है। इससे तो लगता है कि तकदीर नहीं बदलती, लेकिन इससे मुराद क्या है कि ये बात कि आप दुआ करेंगे और आपका ये काम होगा, ये भी लिखा हुआ है। एक प्रैक्टिकल सी मिसाल दे देती हूँ ताकि आपको दुआ मांगने में सहूलत हो। मिसाल है कि आप देखते हैं कि आपका कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा, कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, और आपको लगा कि बीमारी तो इसकी जान भी ले सकती है। मिसाल है कि डॉक्टर्स ने भी कह दिया और दूसरों ने भी कह दिया कि ये बीमार हो गया। अब आप कहते हैं कि क्या फ़ायदा, तकदीर में तो लिखा ही होगा पहले से, और बीमार भी हो गया तो अब मेरी दुआ का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है कि आप कहें, नहीं अल्लाह तू मिटा सकता है, तू दोबारा भी लिख सकता है। अगर तूने वाकई मेरे इस भाई बहन, मेरे इस रिश्तेदार की मौत का वक्त करीब कर दिया, मेरी इस दुआ की वजह से इसकी मौत को टाल दे। मसलन आप कहते हैं कि अच्छा अल्लाह करे ये 10 साल और जिए, तो 10 साल जब होंगे तो आप कहते हैं कि अब उसकी उम्र तो मिसाल है कि 50 साल लिखी हुई थी, मैंने ये दुआ मांग दी कि अल्लाह ताला इसकी उम्र और बढ़ा, असल में अब होगा क्या कि वो 60 साल तक ज़िंदा रहेगा, लेकिन अब तकदीर के साथ उसको कैसे टैली करेंगे। उसके तकदीर के रजिस्टर को अगर आज हम अपनी खुली आंखों से देखें तो उसमें पहले से अल्लाह ताला ने अपने इल्म अजली से ये लिखा हुआ था कि ये फ़ला इसकी उम्र मैंने 50 साल रखी थी, लेकिन इसकी बहन या इसके भाई की दुआ की वजह से 10 साल बढ़ा दूंगा और ये 60 साल का होकर मरेगा। यानी अगर हमने वो दुआ ना की होती तो वो 50 का ही मरता। अल्लाह का लिखा बिल्कुल मैच होता है। और यहाँ मुझे एक बच्ची की बात याद आ गई कि कितने अहतमाम से वो लोग दुआ मांगते हैं कि किसी बुज़ुर्ग को अगर बीमारी का हुआ, आप खुद ही सुना दें, आपने सुनाई थी मुझे सोबिया, मैं कल भी बहुत इंजॉय करती रही आपकी बच्ची की इस बात को, मैं सुनाऊँ अपने लफ्ज़ों में। यानी ये सोबिया ने मुझे कल परसों सुनाई कि इनकी सास की तबीयत कुछ नासाज हुई, डॉक्टर पे गई तो डॉक्टर ने शुबा दिया कि शायद हार्ट की तकलीफ़ है, तो कह रही कि बच्चों तक भी ये बात गई कि दादी बीमार हैं, शायद उनको हार्ट की है। तो इनकी बेटी कहती है, मैं तो नहीं चाहती कि अभी मेरी दादी बीमार हो। फिर कहती है कि बच्ची मेरी मुझे कहती है, अम्मी जब नमाज़ का वक्त होगा तो मुझे बताना। तो फिर उसके बाद जाए नमाज ले के बैठी, बड़ा दुपट्टा ओढ़ आड़ के, और नमाज़ पढ़ी और दुआ कर रही अपनी दादी के लिए। तो कोई इसमें शायद बात हुई कि खड़े होके मांगें कि बैठ के, तो इन्होंने कहा कि अगर आप खड़े होके नमाज़ पढ़ती हैं तो ज़्यादा सवाब होगा बैठने से। तो कहती है, अम्मी मैं सवाब के लिए नहीं पढ़ रही नमाज़, मैं तो दादी अम्मा के लिए दुआ नमाज़ पढ़ रही हूँ और अल्लाह के लिए पढ़ रही हूँ। ये कुछ थी ना बात। तो आप सोचिए ज़रा, एक बच्ची के दिल में ये बात उठती है कि मैंने अपनी बीमार दादी के लिए दुआ करनी है, क्या पता अल्लाह उसको ही लगा दे, दादी की उम्र इसी से बढ़ जाए। तो कभी दुआ मांगने से गाफिल ना हो। होता पता क्या है, हमारे तकदीर के साथ जो मामलात हुए होते हैं ना, उसका अल्लाह ताला दुआओं के साथ कैसे खूबसूरत तरीके से मामला करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी पहले मिसाल देती हूँ, फिर आपको दुआ मांगने का तरीका भी इसमें आएगा। बस एक शख्स है, वो हकीम साहब के पास आता है, कहता है डॉक्टर हकीम साहब पेट में बड़ा दर्द है। अब वो अच्छा नब्ज़ देखा, पेट दबाया, अच्छा। अब वो पूछता है कि क्यों है, ये नहीं बताता कि रात को मैंने ज़रा दो की जगह चार प्लेटें खा ली थी चावलों की, या जली हुई रोटी खा ली थी, कच्चे चावल खा लिए थे, कच्चे चने चबा लिए, कुछ भी हो सकता है ना। अब होगा क्या कि डॉक्टर उसके हकीम साहब उसका इलाज तो करेंगे, लेकिन उनको वजह नहीं पता कि शायद इसको बादी है, पता नहीं सोजश है, सोर्स नहीं बताता। अब अगर डॉक्टर हकीम पूरी तहकीक किए बग़ैर उसको दवा देगा तो ये गैर हकीमाना फैसला होगा, इसीलिए फिर वो कई बातें पूछते हैं, अच्छा क्या किया था, चले थे, खा के सोए नहीं, पिए नहीं। अब इस बात को एक साइड पे करके आप इमेजिनेशन मिलाएं कि कोई भी मुसलमान हमारे पास जो रहते हैं हमारे अपनों में, वो हमें कहता है बस दुआ करिएगा, और हमें तो बहुत ही लोग कहते हैं पता नहीं क्या सोच के। हैरत होती है मुझे कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ किसी के हाथ में नहीं रखी, लेकिन जिसको लोग कुरान पढ़ाता देखते हैं कहते हैं दुआ करते हैं। हर एक के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप ये गुमान नहीं कर सकते कि जो कुरान पढ़ाते हैं उनकी ज़रूर कबूल होंगी, क्योंकि ना हुई तो आपने कुरान पढ़ना छोड़ देना है, कि दुआ कराई थी वो हुई नहीं। तो लिहाजा हम तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते देते कि आप कुरान पढ़ने लग जाएंगे इधर या कहीं भी जाके तो आपकी दुआएं कबूल होंगी, वो बेनियाज है। बहरहाल एक शख्स है, वो आपको कहता है कि मेरे लिए दुआ करें, बड़ी मुश्किल है, मुझे तो हाथ पांव पड़ जाते हैं जब कोई कहता है ना बड़ी मुश्किल आई है। कल परसों भी मैं बात कर रही थी अपने शौहर से, तो मैंने कहा कि यहाँ जो भी कहते हैं ना आजकल बहुत बड़ी मुश्किल आई है, तो अल्लाह माफ़ करे दो में से एक चीज़ ज़रूर होती है, या कोई सूद का मामला होता है, घर बिक रहा है या घर चला गया, या कोई यानी कोई ना कोई बिजनेस का या मनी मैटर है, या बच्चे के घर से भागने की और इस तरह की खराबी होती है। ये दो बुनियादी तौर पर कराई जाने वाली दुआएँ, अल्लाह ताला सबकी मदद करे और इन तकलीफ़ों से निजात दे। लेकिन अब आपके पास कोई आया और वो कहता है कि जी बड़ी सख्त परेशानी आई हुई, आप दुआ करें, अब आप क्या कहते हैं, अल्लाह इसको ये दे दे, ना आपने पूछा कि इसको ये बीमारी क्यों आई, इसके ऊपर ये गम क्यों पड़ा, इसको ये तकलीफ़ क्यों पड़ी। अगर आपने फ़ौरन झाड़ सते यानी फ़ौरन ही आप उसके लिए दुआ करने लगे ना, तो आपकी मिसाल उस हकीम की तरह जिसने रीज़न जाने बगैर दवाई देनी शुरू कर दी, राइट। अब अल्लाह ताला हमें क्या करता है, अब हमें हुक्म नहीं है कि पूछें अच्छा ये मुसीबत आई है तो बताओ तुमने क्या गुनाह और किया था, तुम पे किसी मुश्किल से आई है या आजमाइश है, हम नहीं जानते, क्योंकि दुआ और आजमाइश एक अलग टॉपिक है कि दुआ कैसे आजमाइश के बंदे के साथ है, तकदीर और आजमाइश का जो ताल्लुक़ है। हमें क्या कहा गया कि लोगों के ज़ाहिर पर क्यास करो, मैंने दुआ की या किसी ने मेरे लिए दुआ कर दी कि अल्लाह ये बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है तो इनकी दुआ इनकी मुश्किल दूर कर दे, अल्लाह ताला क्या करते हैं उस दुआ के साथ, उस दुआ मांगने वाले को अजर दे देंगे इस बात का कि उसने अपने किसी गैर हाजिर मुसलमान के लिए दुआ कराई, अच्छा उसके दिल में मेरी मोहब्बत थी, अल्लाह ताला उसको सवाब दे के फारिग कर देंगे, जो बहुत अच्छी बात है। और हदीस है कि गैर हाजिर के लिए दुआ करने वाले के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। अब अल्लाह ताला रुजू फरमाएंगे मेरी तरफ, हाँ जी आप सुनाएं, आपको फ़लाँ की तरफ से दुआ आई हुई है, लेकिन आप अपना सबब तो दूर करें, क्योंकि वमा साबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, जो मुश्किल जो मुसीबत आती है तुम पर, ये तुम्हारे किसी बुरे अमल का नतीजा है। अल्लाह ताला उस मुश्किल में पड़े हुए शख्स के फिर अमल को चेक करते हैं, अगर वो सबब दूर करेगा दुआ लग जाएगी, सबब दूर नहीं करता दुआ मांगने वाले को फ़ायदा होगा लेकिन मान कबूल नहीं होगी। तो खुलासा बात का क्या है कि दुआ मांगें और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें, लेकिन साथ ही साथ इंसान अपने आप को इस चीज़ से भी दूर कर ले कि मैं हर उस चीज़ को अपने रास्ते से निकाल दूंगा जो मुझ पर मुश्किलात और तकलीफ़ों के आने का सबब होगी। मौजू थोड़ा सा चूँकि ये सेंसिटिव है, तो किसी के जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सिर्फ दुआ के और तकदीर के रिलेशन के बारे में। जी आप जी, सदफ़ का सवाल ये है कि दुआ जो हम करते हैं तो जो उसके अल्फाज या हमारी नीयतें या हमारे जज्बात है, क्या वो भी फरिश्तों को पता चलते हैं और वो कैसे ले जाते हैं? तो हमारा एक ही सबक है जो हमें सूरह बकरा के शुरू में पढ़ा दिया गया कि युमिनूना बिलगैब, हमारा गैब पर ईमान है, अल्लाह जैसे जो तरीके कर रहा है वो कर रहा है। मतलब ये कंप्यूटर मेरे सामने खुला है, मुझे ये पता है इसकी स्क्रीन पर क्या लिखा रहा है, मेरी बला से अंदर कितने जोड़ है, कितने टांके हैं, कितनी तारें लगी हुई हैं, जिस दिन ये काम करना छोड़ेगा उस दिन मैं किसी में टेक्नीशियन के पास ले जाऊं कि भाई इसको ठीक कर दे। तो हमारा मामला जाहिर पे होना चाहिए, अंदर खाते किस तरह हमारे तकदीर के मामले हो रहे हैं ये अल्लाह पे डाल दे। ठीक है जी आप। जी बिल्कुल सही समझिए आप कि तकदीर बदल सकती है और बदली हुई तकदीर भी पहले से लिखी हुई है कि अल्लाह ने पहले से लिख दिया है कि ये ऐसा होना था लेकिन इसकी दुआ की वजह से ये कर दिया। और असल में ये सिफारिश का कॉन्सेप्ट भी दुआ के साथ इसी तरह मिलता है। वो भी ऐसे ही एक शख्स गुनाहगार था, जहन्नुम में जाने वाला था, अल्लाह ने फैसला कर लिया कि उसको जन्नत में लेके जाना है, अल्लाह ने पहले ही लिख दिया, लेकिन किसी नबी किसी पैगंबर को या किसी के भी नेक इंसान को कहेगा कि आप इसके बारे में सिफारिश कर लें, वो सिफारिश करेगा तो उसको जन्नत मिलेगी। आप अगर उस शख्स की तकदीर की किताब आज खोल के देखें तो यही लिखा होगा कि ये शख्स अपने अमलों के एतबार से कमज़ोर था, लेकिन अल्लाह ताला ने इरादा किया कि इसको बख्श दे, क्योंकि कोई बगावत नहीं थी या इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं थी, लिहाजा अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इसको जन्नत दिलवा देगा, ये भी लिखा हुआ है। ये ऐसे ही जैसे आप यहाँ कोई ग्रेजुएशन करें, अब हमने रिज़ल्ट तो सारे पहले से तैयार किए हुए हैं ना, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है किसके कितने नंबर है क्या है रिज़ल्ट क्या, इवन गिफ्ट्स भी तैयार होते हैं, लेकिन जो सेरेमनी होती है उसमें लोग शहर की किसी मारूफ़ शख्सियत को बुला लेते हैं कि आप आइए जी, इधर चले, अब आप अपने हाथ से इनको गिफ्ट्स दें, तो क्या मेहमान खसूसी अपने हाथ से गिफ्ट दे सकते हैं कि नहीं 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 मुझे ये बच्ची बड़ी प्यारी लग रही है, आप इसको क्यों पीछे ले गए, इसको आगे दे दें, आइंदा हम उनको बुलाएंगे नहीं है। तो ये है मामला, क़यामत के दिन ये जो सारे अल्लाह ताला ने लोगों से सिफारिशें दिलवानी है, ये असल में वो उनको ऑनर देना है, क्योंकि नेकी करने वाले को दुनिया में सच्ची बात है कोई ज़्यादा इज्जत मिलती कोई नहीं, वो चार छः लोग उसको अच्छा कह दें तो बड़े लोगों ग्रोहों के मुकाबले में कुछ नहीं, जो लोग उसको बुद्धू और अहमक समझ रहे होते हैं और बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं। तो चूँकि दुनिया में नेक बंदे को बहुत प्रोटोकॉल नहीं मिलता, तो अल्लाह ताला जन्नत में दे देगा। ठीक है, इस पे हम एक और छोटी नशिस्त करेंगे कि कल ही बता दीजिएगा, हम कल बात कर लें, अगले सेशन में कर लेंगे मौका दे के, कि दुआ और आजमाइश का ताल्लुक़ या मुसीबतों और आजमाइशों का हमारी तकदीर से, और ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे हम अलग बात करेंगे इंशाल्लाह।
फिर फ्री विल और तकदीर में क्या ताल्लुक
अब दुआ से उठ के तकदीर के टॉपिक पे जा रहे हैं
है? लेकिन हाँ जी, लेकिन
जी,
दुआ तो तकदीर
फ्री
में
विल
क्या
और
ताल्लुक
दुआ के साथ, इनका सवाल अच्छा है इसलिए मैं इसका जवाब दे देती हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दी हुई है, इख्तियार दिया हुआ है, वट एवर आप ये पिक कर लें, आप ये पिक कर लें, आप यहाँ बैठ जाएं ये कर लें, पिक एंड चूज़, राइट। और दूसरी तरफ ये है कि हम बंधे हुए हैं। आप इमेजिनेशन में लाएं एक बकरी, बकरी के गले में एक रस्सी डाल देते हैं मालिक, अब तीन सूरतें हो सकती हैं, रस्सी डाल दी, ये खुला छोड़ दे, भाग जाएगा, फ़ायदा हुआ कोई फ़ायदा नहीं उस रस्सी के डलने का। दूसरी सूरत है कि जहाँ वो गले में रोप डाला हुआ है ना पटा, उसी के साथ एक कील लगाए और दीवार के साथ लगा दे, क्या होगा, बकरी हिल नहीं सकेगी, बंध गई, महफूज हो गई, लेकिन उसका दम घुट जाएगा। एक तीसरी सूरत क्या है कि गले में पटा तो डाल दिया, उस पटे के साथ अब एक रस्सी बांधे, एक सिरा उसमें और 2-4 फुट की रस्सी दूसरी किसी दीवार के साथ खूंटी से बांधे, ये तीसरी सूरत है। अब इसमें क्या हुआ, सबसे ज़्यादा सहूलत है ना, बकरी के गले में पटा भी आ गया, उसको थोड़ी सी आज़ादी भी मिल गई, उस पटे के अंदर अंदर घूम सकती है, उन 3-4 फुट के एरिया में जहाँ तक वो रस्सी जाएगी वो घूमेगी, और ज़रा छुड़ाने लगेगी तो चीख मारेगी, गला दबेगा। बिल्कुल अल्लाह ताला ने हम इंसानों के साथ ये तीसरा मामला किया हुआ है, हम सब के गलों में तकदीर के पटे डाले हुए हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है कि बिल्कुल तकदीर का पटा लेके वहीं कील नहीं ठोक दिया कि इंसान मजबूरे कुल है, और ना हमें रस्सियाँ खोल के छोड़ दिया कि जो मर्ज़ी करो, हमारी ये जो रस्सी बंधी हुई है ना ये शरीयत की रस्सी है, हमारी मर्ज़ी और इख्तियार की रस्सी, हम एक हद तक जा सकते हैं, अपने फ़ैसले चेंज करवा सकते हैं, दुआएं मंगवा लें, हम नेकियां करें हमारी तकदीर बदल जाएगी, हम सिला रहमी करें हमारी तकदीर बदलेगी, हम लोगों से अच्छा सलूक करें हमारा माल बढ़ेगा, हदीस में कि दुआ से भी तकदीर बदल जाती है, सिला रहमी से उम्र में इजाफा होता है, रिस्क में बरकत होती है। तो ये जो ही हम उससे ओवर लीड करने लगते हैं, मसलन हम में से कोई के क्या अल्लाह मेरी तकदीर में, मिसालें चले हम तो अब अपने लिए क्या ये दुआ करेंगे, कोई माँ है उसके पेट में बच्चा है, 8-9 माह का बच्चा हो चुका है, अब उसके पेट में अल्लाह ताला ने बच्ची पैदा कर दी है, ऑलरेडी बच्ची है, अब वो माँ दुआ करती रहे कि अल्लाह मेरे मुझे बेटा देना, मुझे बेटा देना, अब अल्लाह को पता है पेट में बेटे बेटियाँ बेटों में बदल जाती हैं कि नहीं बदलती, लेकिन अल्लाह ताला ने असबाब के तहत चीज़ें की, अब वो नहीं बदल रही, लिमिट ख़त्म हो गई उसकी दुआ मांगने की। हाँ बच्चा अभी पैदा नहीं होने वाला था, अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, अभी वो मरहला नहीं आया, वो दुआ मांगे अल्लाह मुझे बेटा दे, तो हो सकता है कि उसकी ये दुआ अल्लाह के उस फैसले को बदल दे जो बेटी का था, तो वो बेटा हो जाए, अंडरस्टैंड। हाँ जी देखें आज कितने जी जी मैं समझ गया आपकी बात। इन्होंने कहा कि अगर दुआ से भी तकदीर बदल ही जाती है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि दुआ तकदीर नहीं बदलती।
तकदीर बदल सकती है क्योंकि
तकदीर इसलिए बदलती है कि हमें नहीं पता होता कि ये लिखा हुआ कैसे है। आप गौर करें, मिसाल देती हूँ आपको कि एक चीज़ लिख के रख दी, जैसे मैं इस पेपर पे कुछ लिखूं और इसके बाद मैं इसको छुपा के अपने पर्स में रख दूं, या मैं आपको ही दे दूं कि इसमें कुछ लिख लिखा दिया और इसके बाद इसको लिखा। कोई एक स्टूडेंट है बहुत ही नाहल, नकम्मा, बेकार किस्म का, उस्ताद देखता है कि ये बहुत ही गैर संजीदा है और ये मेहनत नहीं करता और इसकी सोहबत भी बुरी होती जा रही है, बाद उस पर लिखता है कि ये लड़का बहुत ख़राब है और एक दिन ये गलत काम करते करते जेल में पहुंच जाएगा। अब इस लिखे हुए को वो बंद करे, इसको छोटे से कागज़ पे बांध दे, आप वो हैं नहीं लेकिन मिसाल दे रही हूँ, वो उस शागिर्द को कहता है कि आप इस पेपर को रख ले अपने पास कहीं संभाल के, और कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई ना तो इसको खोल के पढ़ लेना, आपको फ़ायदा होगा। अब वो स्टूडेंट इसको अपने वॉलेट में रख ले और फिर वही हो जिसका उस्ताद को ख़तरा था। 2-4 साल गुजरे या कुछ महीने गुजरे, वो लड़का किसी गैंग के साथ मिला, उसने चोरी की और जेल में चला गया। जो ही जेल में गया उसको याद आता है उस्ताद साहब ने एक पुड़ी दी थी, शायद तवीज़ ही है या क्या है, को वजीफ़ा लाओ खोलो। वो फौरन वो कागज़ खोलता है, दे मेरा वापस। अब वो कागज़ को खोल के तो पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि ये लड़का अपनी बुरी हरकतों की वजह से एक दिन जेल में पहुँच जाएगा। इसको पढ़ते ही वो बुलाए, इधर आए जेलर साहब, इधर आए, इधर आए। क्या भाई? वो कहेगा जी मुझे जेल से छोड़ दें, निकालें, ये पकड़े मेरे उस्ताद को डाले, उसने तो आज से 2 साल पहले कह दिया था कि मैं जेल में जाऊंगा। माने लिखा हुआ मौजूद था ना। जेलर कहेगा कि क्या आपने ये लिखा हुआ देखकर चोरी की? अल्लाह ताला के पास लिखा होता है लेकिन हमें नहीं पता होता। हाँ, हमारे लिए मसला तब होता जैसे बच्चा पैदा होता तो साथ ही ये किताब भी नाजिल होती, माँ खोलती है इसका डे वन है, इस दिन बच्चा बीमार होगा, इसको ये होगा, इसको ठंड लग जाएगी, ये दूसरा दिन है, माँ सोचती है कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैंने बच्चे को अपने से दूर किया तो ये तो बेचारा बीमार हो जाएगा, बेबी सिटिंग में इसको भेजा तो पता नहीं इसका क्या हाल हो जाएगा, और मैं इसकी बड़ी अच्छी हिफाजत करती हूँ। अब तो रोज़ सुबह पढ़ते और कहते भाई मैं अपने बच्चे को बेबी सिटिंग में नहीं भेज सकती क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मैं उधर भेजूंगी तो बच्चा बीमार हो जाएगा, दिस एंड दैट। बात नहीं बनती ना। हम जो करते हैं अपने फैसलों से करते हैं। हमारी तकदीर की किताबें अल्लाह हमें दे सकता था, यकीन करें दे सकता था, उसने नहीं दिया। क्यों? कि फिर तो हम कहते कि अल्लाह मैंने पढ़ा था कि आज मैंने फिल्म देखनी है, आज मैंने पढ़ा था कि मैंने सिनेमा हॉल जाना है, मैं ना जाती तो अल्लाह ताला आपका लिखा हुआ ख़राब हो जाता और मैंने आपको नौज़ुबिल्लाह झूठा नहीं करार देना था। हम जो करते हैं अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ये तकदीर और तदबीर का खेल है। आप वो लेक्चर मेरे लिए सुनी लें, आपके काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे। जी पहले आप जी, बच्चा बहुत शरारतें कर रहा और माँ उसको कह दे कि देखो गिर जाओगे तुम, ना करो, और वाकई वो गिर जाए तो वो कहेगा जी कि माँ आपने तो पहले ही कह दिया था मैं गिर जाऊँगा। तो इसके बहुत सारे लॉजिक्स हमें समझ आते हैं अगर समझना चाहें तो। ठीक है, चले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।